بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى أئمة الهداة الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. ہم عصر ظہور اور امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انتظار کے حوالے سے جس موضوع کو ڈسکس کر رہے تھے اس کا آخری پانچواں اور آخری حصہ ہے جو علامات ظہور کے حوالے سے ہے. ظاہر ہے کہ ہم یہاں بہت ڈیٹیل میں علامات ظہور کے اوپر گفتگو سے پہلے کچھ اہم جو ہے نکات کو بیان کریں گے اور علامات ظہور کے بارے میں بھی بہت زیادہ ایک ایک علامت کے اوپر ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکیں گے. اس کے لیے ایک الگ سے انشاءاللہ ایک سیریز ویڈیوز کی ہوگی جس پر گفتگو کیا جائے گا. سادہ الفاظ میں جو آج کل ٹرمینالوجی یوز ہو رہی ہے اینڈ آف دی ٹائم یا اردو میں آخری زمانہ, ایک پرکشش اور طویل تاریخ کی حامل اصطلاح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی اور ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور دوسری انگلی کے درمیانی یعنی انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے ایسے کر کے فرمایا کہ میں اور حشر ان دو انگلیوں کی طرح ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, یعنی اگر میں اب میرا ظہور ہوا ہے, میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے مبعوث ہو کر, دیٹس مین قیامت بھی آنے والی ہے. بس جو علامات قیامت یا آخری زمانے یا اینڈ آف دا ٹائم کے عنوان سے بیان ہو رہی ہیں وہ ظہور کا زمانہ بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. لیکن ظہور امام کی نشانیوں کے لیے جو مخصوص ٹرمینالوجی اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ظہور کی علامتیں اور نشانیاں کے عنوان سے ہوتی ہے, جبکہ اہل سنت بھائیوں کی جو کتابیں ہیں ان میں زیادہ تر اشراط الساعہ یعنی جو ہے وہیں قیامت والی ٹرمینالوجی کو استعمال کیا ہے, اگرچہ اس میں قیامت سے جو پہلے کا زمانہ ہے جس کو ہم عصر ظہور کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے آ جاتا ہے. عصر ظہور اور آخری زمانہ یا ظہور سے پہلے کے زمانے میں کیا فرق ہے, آخری وقت اور آمد امام کے درمیان جو ہے بنیادی طور پر کیا ڈفرینسز ہیں, اس طرح کے جو سوالات ہیں مختصراً اس کو ہم ایڈریس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری زمانے کے بارے میں بہت سی جو احادیث ہیں اس میں اس کی کوئی اچھائی بیان نہیں کی گئی ہے ظہور سے پہلے کے زمانے کی, بالعام طور پر جنرلی یعنی کوئی اچھائی بیان نہیں ہوئی ہے کمپیئر ٹو عصر ظہور. ڈیفینیٹلی عصر ظہور ایک بہت ہی ثقافت, تہذیب, ترقی, امن و سکون, پیسفل, راحت, نعمتوں کی فراوانی, رحمتوں کی بارش کا پھیلاؤ کا دور ہے جو عصر ظہور ہے. جب امام کا ظہور ہوگا تو ایک آئیڈیل سوسائٹی کی تشکیل کا دور ہے, جبکہ ظہور سے امام کے ظہور سے پہلے کا جو زمانہ ہے زیادہ تر یعنی موسٹلی ایک افراتفری, فتنوں, اضطرابات, افراتفری, قتل و غارت گری اور جو ہے اس طرح کی چیزیں ہیں, اور حتیٰ بعض چیزیں جو کیونکہ انسان ایک لالچ میں اور نفسا نفسی کی کیفیت میں ہوگا تو ایگزامپل دیا کہ اگر بارش بھی ہو تو وہ بارش بھی بہت سی لوگوں کے لیے دکھ اور عذاب اور مسائل کا سبب بنے گی رحمت کے بجائے, حالانکہ بارش ان پرنسپل رحمت کی ہے لیکن انسان نفسا نفسی کا اس قدر شکار ہوگا اپنے ذاتی مفادات اور اس کی خاطر جو ہے اسی بارش کو وہ جو ہے ایک سیلاب کی شکل میں تبدیل کر دے گا. یہ ایک صرف جو ہے اس کو بینوان ایک ایگزامپل کے طور پر بیان کیا. امام کے ظہور سے پہلے کے حالات کے بارے میں جو موجود احادیث ہیں ہمارے پاس وہ دو قسم کے حالات بیان کرتی ہیں. پہلے حالات وہ ہیں جو ضرور رونما ہوں گے, اس طرح کے حالات ضرور پیش آئیں گے جس کو حتمی کے طور پر بھی اصطلاح ٹرمینالوجی استعمال کیا ہے, اور دوسرے ایسے ہیں کہ پاسبلٹی ہے ممکنہ طور پر پیش آ سکتے ہیں. حتمی علامات کیونکہ وہی ٹرمینالوجی یوز ہو رہی تو اس کو ہم یوز کریں گے. حتمی علامات کے بارے میں علماء کی رائے مختلف ہے لیکن چار مین جو ہے سائنز یا علامتوں کو بیان کیا گیا ہے, جن میں سفیانی نام کی ایک ایسی نگیٹیو شخصیت کا آنا ہے, ایک ایسے فرق کا آنا ہے جو تباہی کا سبب بنے گا. जमीन का एक ऐसे अनयूजुअल तरीके से धस जाना है, आसमान से एक आवाज का आ जाना है जिसको अंडरस्टैंड करना इतना मुश्किल नहीं है आज की हमारी जो एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको लेकर, एक बहुत ही अच्छे किरदार की मालिक शख्सियत का कत्ल हो जाना है जिसको नफ्से ज़किया कहा है। और इसी तरह जो है इसके अलावा जो बहुत ज्यादा हाईलाइट की गई हैं जिन हालात को, जो कि बाज़ औक़ात हतमी के दायरे में नहीं रखा उलमाए कराम ने, या रिवायात की जो वर्डिक है वो इस तरह के नहीं है, उसमें है कुम शहर और यहाँ से होने वाला एक कयाम है जिसको मुख्तलिफ अनामीन दिया गया कि कुम से एक सैयद कयाम करेंगे, कुम से एक आलिम कयाम करेंगे, बाज़ जगहों में को फरमाया कि हम से ताल्लुक रखने वाला, इन्हें वो आइम्मा किरदार के अतबार से अहले बैत अलैहिस्सलाम के बहुत नजदीक होंगी वो शख्सियत जिसके बारे में उलमा की, यानी मैं कहूंगा कि 98% कम से कम जो है उलमा का ख्याल है कि वो इमाम खुमैनी का जो इनकलाब था वो वही इनकलाब है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है। कुम तो वैसे एक खास पोजीशन हासिल रही है, इसी तरह नजफ अशरफ को और दीगर देखों को। इन अलामत का बेसिकली फायदा क्या है? ये अलामत बेसिकली हमें जो फायदा पहुंचा सकती हैं वो खुलासा कर ले उसको, तो एक समराइज ये बनती है कि अलामत इमाम के जहूर पर हमारे यकीन और भरोसे में इजाफा करती हैं, और ये अलामत क्योंकि हिस्सी हैं, इंसान विजुअली देख सकता है, बास चीजों को सुन सकता है, आलम हिस से ताल्लुक रखती हैं जो हमारी फिफ्थ सेंस है, तो लिहाजा और जो है इंसान को इन चीजों को समझने में जरा बेहतरी पैदा हो सकती है, क्योंकि हमारी जो ज्यादा मसाइल हैं वो हम फिफ्थ सेंस को ही यूज करते हैं। इसी तरह झूठे जो दावेदार हैं बहुत से आज भी हैं ये झूठे दावेदार, हम इसके आखिरी सेशन में इशारा करेंगे, डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे, इशारा कर देंगे कि उनको उनकी हकीकत को खोलती हैं कि ये झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं। बहुत से मुंतजरीन जो इमाम के जहूर के इंतजार और हकीकी इंतजार कर रहे होते हैं उनके लिए एक हेल्पफुल एक फैक्टर बन सकती हैं, एक मददगार अवामिल के तौर पर जो है मदद कर सकती हैं। और अगर इनको बहुत बारीकी से और आलिमाना तरीके से इसको परखा जाए, इसको इसको एनालिसिस किया जाए, तजिया और तहलील किया जाए, तो हमारी दुनिया में होने वाले बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे हालात को भी हम बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसको तजिया कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रुकूंगा कि एक मसला जो कि आमतौर पर अवाम में बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है और बाज उलेमा कराम इंक्लूडिंग बंदे हकीर की बात मुस्कुन के हैं कि जो इस्लाही और इखलाकी और वाज और नसीहत के पहलू से की जाने वाली जो स्पीचेस हैं उसकी वजह से भी ये हो सकता है, किताबें जो हैं उसकी वजह से भी ये, लेकिन एक राय आम तकरीबन अवाम में ये बातें फैलती जा रही हैं। मसलन कुछ ऐसे मसाइल हैं इसमें कि वो ख्वाब वाली बातें हैं कि फला मसलन आलिम ने, फला शख्स ने, फला बंदे ने, फला अच्छे किरदार के मालिक ने ख्वाब में देखा कि इमाम जमाना जल्लल्लाहु ताला फर्जहु शरीफ ने फरमाया वगैरह वगैरह वगैरह। एक तो ये मसला हमारे सामने है, दूसरा है मुकाशिफा, जो अल्लाह के वली हैं, जो रूहानी तौर पर एक अपने आप को बना चुके हैं, एक ऐसे मकाम और मंजिलत पर पहुंचते हैं कि उनके सामने कुछ चीजें कशफ हो जाती हैं। मुकाशिफा जिसको कहते हैं, कशफियात जिसको हम कहते हैं उलमाए औराफा और इल्मे इरफान के अंदर भी बहस की जाती है, तो डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा तेजी से गुजरते हैं। ख्वाब क्या है? ख्वाब की शरी क्या, ख्वाब जो है एक शरी हैसियत रखता है, यानी एक शरी दलील के तौर पे आ सकता है, एक हुज्जत कहलाएगा ख्वाब को। ये जहन में रखें कि शिया उलमा और फुकहा अइमा अलैहिस्सलाम की रिवायात को पेश नजर रखते हुए में से किसी ने भी, किसी भी शिया आलिम ने, किसी भी फकीह ने फिकी अहकाम की दरियाफ्त करने, उसे समझने, अंडरस्टैंड करने मैं ख्वाब को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। शरी अहकाम कुरान और सुन्नत अक्ल और इजमा से साबित होते हैं, ना ख्वाबों से। ख्वाब की कोई हैसियत नहीं है इसमें। कोई शख्स आके कर कोई इतना बड़ा ही आलिम क्यों ना हो और वो कहे जी ख्वाब में मैंने देखा कि फला रिवायत ऐसी वैसी है, या फला नई जो है एक इमाम ने मुझसे ये फरमाया, बहरहाल एक नई रिवायत को हम ऐड कर दें क्योंकि उस शख्स ने ख्वाब में, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मासूम अलैहि सलाम के फरामीन इस सिलसिले में बहुत क्लियर हैं कि फरमाया इन्ना दीन अल्लाही अज़्ज़ा व जल्ला आद्द मन अन युरा फिन नौम, यानी ख्वाब में खुदा के अहकाम जो है और खुदा का दीन नहीं दिया जाता। मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि ख्वाब में इमाम की ज्यारत नसीब हुई और इमाम ने ये हुक्म दिया, तो हम उसके उस ख्वाब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी हाल में। हो सकता है ख्वाब उसका सही हो, उसने इमाम की ज्यारत नसीब हुई हो, लेकिन खुद आइमा ने ही एक क्राइटेरिया और हमें एक मैार दिया है। बहुत सी रिवायात में बताया गया कि एक सच्चा मोमिन भी बेमानी और बेमकसद ख्वाब देख सकता है और उसके ख्वाब हमेशा सच्चे हों, ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई 100% ऐसी बात नहीं है। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में कोई चीज देखी हो और अकल के साथ साथ आया तो अहादीस से भी मुतसादिम हो, तो ये ख्वाब बलाशुबा झूठा है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। दूसरा जो मसला आ रहा है वो मुकाशिफे का है। देखें, मुकाशिफा भी किसी किस्म की कोई शरी दलील नहीं बन सकता है कि अगर ये मुकाशिफा हकीकत पर मबनी हो तो फिर सिर्फ उसी शख्स के लिए हुज्जत है और दलील हो सकता है, वो भी बाज़ उलमा की राय में जिसे ये मुकाशिफा हुआ है, लेकिन वो दूसरों के लिए इसको एक दलील के तौर पर बयान नहीं कर सकता कि दूसरे भी उसकी इस दलील को एक्सेप्ट करें कि उसे आलम मुकाशिफा में ये हुआ है, लिहाजा उसको एक एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट कर लें और आइंदा दीनी मामला को उसके मुकाशिफे में आई हुई चीजों के जरिए से परखना शुरू कर दें। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि खुदा का दीन इस तरीके से नहीं आता। लिहाजा ये जहन में रखें, कभी वाज़ और नसीहत में ख्वाबों और मुकाशिफों के किस्से बताए जाएं ताकि इंसान इसे अखलाकी तौर पर और अमल के मैदान में एक जज्बा पैदा कर ले, एक मोटिवेशन ले ले। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो ख्वाब और मुकाशिफा एक शरी दलील बन जाए हमारे लिए और हम अपने दीनी अहकाम को उसकी बुनियाद पर अंडरस्टैंड करना शुरू कर लें, ये बिल्कुल भी सही, या उसे एक एविडेंस के तौर पर ले आए और दीनी एक शरी हुक्म उससे निकालें, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। फलां शख्स ने इमाम को ख्वाब में देखा या मुकाशिफा हुआ ऐसा वैसा था, तो ये ख्वाब और मुकाशिफा अगर हकीकत के मुताबिक हो तो ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है, मैक्सिममली जो बात कही जा सकती है वो खुद उसको देखे कि अमल करना है या नहीं करना है, लेकिन दूसरों के लिए किसी किस्म की कोई दलील और कोई चीज किसी दूसरे के ऊपर लाजिम नहीं होती है। लिहाजा अगर कोई कहे इमाम जमाना ने ख्वाब में फलां शख्स को यह बयान फरमाया कि जहूर नजदीक है या जहूर दूर है या ऐसा है या वैसा है, तो इसको बेनवान एक दलील के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता और न ही इसकी बुनियाद पर कोई भी इकदाम हो सकता है। आखिरी पॉइंट जो इस सिलसिले में बयान करना है वो ये है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला एक परचम या एक झंडा है, एक फ्लैग है, जिसमें अलबैअतु लिल्लाह या अलबैअतुल्लाह लिखा हुआ है और मुख्तलिफ शक्लों में ये डिजाइन किया गया है, बहुत से उलेमा को दिखाया है, बाज़ औक़ात बहुत से अच्छी आलम तशय्यो की अच्छी शख्सियात को, मुसलमानों की अच्छी शख्सियात को के साथ जो उनकी तस्वीरें लेके बनाया गया है। मैं आपको वार्न करता हूँ कि होशियार रहे इससे, ये खतरनाक मूवमेंट का जो है एक अलामत निशानी या एक सिंबल है जिसको उलमाए कराम खासकर आयतुल्ला जो है अली पुरानी ने बसरे के दज्जाल का नाम दिया है या टिगर जो है इस तरह के अनामी ने, या अभी स्टिल है, ये चीज अभी स्टिल मौजूद है सोशल मीडिया के अंदर। ये जो मूवमेंट चला रहे हैं इनमें से बहुत से अफराद ऐसे रहे हैं या भी हैं कि जिन्होंने कभी दीनी दसगाहों की शक्ल नहीं देखी है, किसी हौज़े अलमिया की शक्ल भी नहीं देखी है। इनमें से बाज जो इराक में है, क्योंकि बेस्ट मोस्टली ये इराक से बेस्ट करती हैं, अलबत्ता फैली हर जगह है, वो सद्दाम जो साबिका डिक्टेटर और जालिम थे उनकी खुफिया एजेंसी के अहलकार थे। उन्होंने, ये बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ उलमाए कराम को खतूत लिखे हैं, औज़े नजफ़ अशरफ में लिखे हैं, औज़े कुम में, इंक्लूडिंग आयतुल्ला जवादी आमली जैसी अजीम शख्सियत को, रहबरे आज़म इनकलाब को पैगाम भेजा, लेटर लिखा है, और खुद आयतुल्ला जो अली कुरानी है असर जहूर किताब के मुअल्लिफ हैं, उर्दू जबान में भी उसका ट्रांसलेशन हो चुकी है और काफी मशहूर किताब है, बहुत सारी और किताबों के मौलिक भी, अली कुरानी को भी खुतूत लिखे, फिर अली कुरानी को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा भेजा उन्होंने मशहद में, एक शख्सियत से मिलकर उन्होंने कहा जी आप हमारा ये मैसेज डिलीवर करें राहबर को, या नजफ में कहा जी आप ये मैसेज डिलीवर करें आसिस्तानी को या फला मुश्तहिद को। तो ये जो है आयतुल्ला कुरानी ने उनको सुना और उनके नुमाइंदे को सुना और उनको फिर पहले मुनाजरे और डिबेट की दावत दी, उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया, फिर डिनाई करते गए, फिर टालते गए, उसके बाद आखिर में बात यहां तक आए कि आयतुल्लाह खुरानी ने कहा जी आ जाएं, मुबाहिला करते हैं, मतलब आते हैं खुदा के हुजूर, दुआ करते हैं कि जो झूठा है उस पर खुदा की लानत हो, लेकिन वो भाग गए, वो आया नहीं है। ये सोच अभी भी मौजूद है, ये तहरीक अभी भी दबे दबे अंदाज से काम कर रही है, बहुत से लोग न पहचानते हुए इसका हिस्सा बन सकते हैं। लिहाजा हमारा काम है कि होशियार रहें। मुख्तलिफ शक्लों से जो है ये मूवमेंट मौजूद है, न कहें हमारे मुल्कों में भी है, मुख्तलिफ शक्लों सूरतों में है। मैं नहीं ज्यादा आपको वो करना चाह रहा, लेकिन बहुत सी अहम शख्सियात को इन्होंने शुरू में अपनी लपेट में ले लिया है, हमारी अहम जगहों के अंदर। तो लिहाजा इनके मुख्तलिफ शक्ल सूरतें हो सकती हैं, लिहाजा इनसे भी होशियार रहने की जरूरत है। इंशाल्लाह खुदाए मुताल ने तौफीक दी तो अगली एक सीरीज होगी बाकायदा अलामत जहूर को लेकर, और उनमें से कुछ सिलेक्टिव अलामत के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और इंक्लूडिंग ये जो बसरे के दजाल वाली मोमेंट्स हैं जिसको टाइटल दिया आयतुल्लाह कुरानी ने, इसके ऊपर भी हम मजीद डिटेल में इंशाल्लाह उर्दू जुबान में डिस्कस करेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले जो टॉपिक हमारे सामने है वो दो अहम टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ख्वातीन की शख्सियत, किरदार, उनके राइट्स और फेमिनिज्म मूवमेंट, और इनके को लेकर हमने डिस्कस करना है, जो मुमकिन है 1 से 2 या 3 वीडियोस हो सकती हैं। दूसरा जो एक बड़ा मसला एक है सोशल, खासकर हमारे यूथ के दरमियान, और ये अब ग्लोबल शक्ल अख्तियार कर गया है, वो बढ़ती हुई खुदकुशियां हैं, खुदकुशी का, सुसाइड अटम्प का मामला है। तो इसको भी जरा हम डिस्कस करना चाहते हैं, और यूथ के साथ हम ज्यादातर इसमें यूथ को एड्रेस कर रहे होंगे, तो जरा कोशिश करेंगे कि उन्हीं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिस्कस किया जाए। वस्सलामुअलैकुम।